ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि देवताओं के कदम में पादम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण ही यहाँ संगम युग के अंदर पद्मों की कमाई करते हो। मुरली का एक एक वर्षन करोड़ों अरबों पद्मों की कमाई का है, तो बच्चों को मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली पर ध्यान देना है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है, उसमें बाबा ने दो बातें कही। एक है चुप रहना। चुप रहना में शांति से ही बाबा को याद करना। दूसरा बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। फिर तीसरी बात बाबा ने खास कही कि सहज पुरुषार्थ का तरीका क्या है। संकल्प तो दो प्रकार के आते हैं, एक है श्रेष्ठ संकल्प, अच्छे संकल्प, दूसरे है बुरे। तो बाबा ने कहा कि बुरे संकल्पों को निकालते जाना है, अच्छों को धारण करते जाएंगे तो पुरुषार्थ भी सहज होता जाएगा। फिर बाबा ने मुरली के अंदर चित्रों पर समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताई हैं, लेकिन बच्चे कहते बाबा पहले आपने क्यों नहीं बताया। बाबा कहते पहले बता देते तो समझते नहीं। तो बाबा ने आज क्या करेक्शन किया, बहुत लंबा सेंटेंस बाबा ने बोला, वो भी हम सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कच्छ में कुरम, मीन्स उनकी कच्छ में गीता होती है। लेकिन तुम बच्चों के लिए गीता कौन सी है? तुम बच्चों के लिए गीता है ये बैज। ये बैज के ऊपर तुम समझा सकते हो, तो वो भी बाबा ने बताया कैसे समझाना है। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 15 मार्च 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, यही है सच्ची गीता का सार। वैसे भी गीता में कहा है ना, सब धर्मों को भूल एक बाप को याद करो। तो बाबा कहते मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना, जब ये स्मृति रहेगी तब फिर ये देह के संबंधी आदि भी बुद्धि से भूलेंगे। मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, यही है गीता का सच्चा सार। आज का प्रश्न है तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? इसका उत्तर है बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, योग में बैठे हुए बिल्कुल शांति से बैठो। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी। और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, यही है सहज पुरुषार्थ। शांति से बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, और बाप की याद करते रहेंगे, चक्र को घुमाने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझाने देते, रोज रोज बाबा को पढ़ाना पड़ता है, रोज रोज समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कलप पहले मौफिक, बाबा भी पक्का कराते हैं, जिन्होंने कलप पहले ज्ञान सुना है वो अभी सुनेंगे और कलप पहले मौफिक ही पढ़ रहे हैं। बच्चे समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कलप पहले मौफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। लौकिक में समझते कृष्ण पढ़ाता है, यहाँ बाबा बताते हैं परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो, कितना नशा होना चाहिए, तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी, ये परिवार भी है, यज्ञ भी है, पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और बाबा क्या कहते हैं, साथ साथ हॉस्पिटल भी है। तो आज बाबा ने कहा ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते, सदगति कब मिलती है, जब बाबा आकर के सच्ची गीता सुनाते। मनुष्य ये नहीं समझते हैं, बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति करते आए। भक्ति मार्ग में गीता पढ़ी और साधु महात्माओं ने क्या बोला, नेति नेति कहा, तो बस जानते ही नहीं थे रचयिता कौन है, रचना कौन है। रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे, बाबा हमेशा कहते थे जो सर्विस पर रहते हैं ना, उनका पूरा टाइम विचार सागर मंथन चलता है, मनन करते हैं कैसे समझाना है। तो बाबा कहते हैं जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हो। कभी कभी बाबा कहते थे शिव भगवानों वाचे लिखो, फिर कभी बाबा ने करेक्शन किया त्रिमूर्ति शिव भगवानों वाचे। आज बाबा ने एक बहुत लंबी लाइन लिखाई है, क्या लिखना है, हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर पतित पावन, दूसरा गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा, तीसरा परम शिक्षक, चौथा परम सतगुरु शिव भगवानों वच। कितना लंबा, तो जो भी कोई पूछेगा तो उनको बता सकते कौन बता रहा है। तो बाबा कहते हैं हर चित्र में जो लिखा हुआ हो ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवानों वाचे। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए कि त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। जब बाबा ने टॉपिक दिया था उस समय इस टॉपिक के ऊपर बहुतों से ओपिनियन लिखवाते थे और समझते थे लोग और लिख करके भी देते थे, ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता, बाप दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि पहले बाबा ने क्यों नहीं बताया। कई बच्चे ऐसे होते हैं काम नहीं करना चाहते ना, तो कहेंगे ये क्या एक बार तो बन गया, दोबारा दोबारा कौन करेक्शन करेगा, चित्र बन जाता था ना, बाबा कहते थे बच्चे इसमें करेक्शन करो। कई बच्चे काम नहीं करना चाहते थे, बाबा को कहते बाबा पहले क्यों नहीं बताया, बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, हर रोज तो नई नई पॉइंट मिलेगी ना, तो बाबा कहते ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में ही नहीं था। बाबा कहते जब समझेंगे तब तो बताऊंगा ना, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज एंड फॉल। बाबा ने जब ये बात किया था ना तो चित्र पर लिख दिया था राइज एंड फॉल ऑफ द वर्ल्ड है, तो लिखते भी है राइज एंड फॉल। हिंदी में कहते भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी। किसका उत्थान होगा? तो बाबा कहते वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी। 100% प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कलप के बाद फॉल होता है, डेविल डायनेस्टी का फॉल। बाबा कहते हैं राइस लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, और फॉल है डेविल डायनेस्टी का फॉल। राइस एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन भी लिखना है। अब हम कहते ना फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉल में तो कई बातें आती, तो बाबा कहते डिस्ट्रक्शन शब्द भी लिखो, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है, बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं, बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे, पसारे मीन्स विस्तार, देह के जो कितना विस्तार है, इतना विस्तार है, अपने ही देह का बहुत बड़ा विस्तार है, फिर देह के संबंधियों का है। तो बाबा कहते हैं इन देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, जब घर जाने की बात आएगी याद, तो ये सब संबंध आदि भी मिटने लगते हैं। आधा कल्प वापिस जाने के लिए इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापिस जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, सतयुग में जाना है, ये है वो तो किया ही नहीं, पुरुषार्थ क्या करते, मुक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई वापिस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, कहते ना भक्ति में कहते हैं। लेकिन बाबा कहते सुख कब है वो भी उनको पता नहीं है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, परंतु सुख कब है दुख कब है ये भी नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त, कि सुख कब होता है दुख कब होता है। बाबा कहते ये सारी बातें जो है इतनी गुप्त है, रहस्य भरी है, जो दुनिया वाले समझ नहीं सकते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। फिर बाबा ने दूसरा टाइटल दिया, बाबा ने कहा हम ही रूहानी मिलिट्री है। तो आज कौन बैठे हैं? रूहानी मिलिट्री। बाबा कहते हम ही रूहानी मिलिट्री हैं, शिव बाबा की शक्ति सेना। रूहानी मिलिट्री और दूसरा शिव बाबा की शक्ति सेना, इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवी आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। आप पूछो ये कौन है, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते जिनकी पूजा करते तो कम से कम ये तो जानना चाहिए कौन है कैसे बने। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है ही नहीं। हाईएस्ट कौन है? शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राधे कृष्ण एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। हर स्टेट में अलग मंदिर मिलेगा और शिव बाबा का उसका नाम भी अलग होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ड्रामा में भी मुख्य एक्ट्रेस होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य एक्ट्रेस कौन कौन है वह भी तुम जानते। इस ड्रामा में मुख्य एक्ट्रेस कौन कौन है? शिव बाबा है और कौन है? मम्मा, बाबा और बाबा क्या कहते हो, सभी एक्ट्रेस कौन कौन है? बाबा कहते तुम जानते हो। इस ड्रामा में मुख्य एक्ट्रेस कौन कौन है ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते राम जी संसार बना ही नहीं, भक्ति में क्या गाते रहते, हे राम ये संसार बना ही नहीं, बना ही नहीं है तो फिर आए क्यों। मनुष्य तो कह देते राम जी संसार बना ही नहीं, इस पर भी एक शास्त्र बना हुआ है, अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है बताओ, कौन सा है? अभी बताया था ना सार में, सहज पुरुषार्थ क्या है? चुप रहो, चुप रहना, बाबा की याद रहना। इसमें बहुत से राज हैं, बहुत सी प्राप्तियां हैं। बाबा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। एक है चुप रहना, एक है बिल्कुल चुप रहना। चुप रहने से ही बाप का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या फायदा होगा? बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। विकर्म विनाश होंगे, निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, नरक के मालिक हैं कोई भी नहीं है, कहेंगे हम नरक में हैं, कोई भी कुछ भी मालिक नहीं है। भी बाबा को कहना पड़ता है नरक में हो, तुम अभी नरक के मालिक हो, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, लेकिन उसमें भी पद हैं। कहाँ विश्व महाराजन, कहाँ राजा रानी, कहाँ रॉयल प्रजा, कहाँ प्रजा में भी कहाँ एकदम लास्ट का। तो बाबा कहते हैं उसमें भी पद हैं। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? बाबा कहते इतने रत्न दिए, सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई तो साहूकार बनते हैं। कहा जाता है इसने 5 जन्म में दान पुण्य अच्छा किया। लौकिक में भी कोई अच्छे घर में जन्म लेता है ना तो कहते भाग्यशाली है, इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं तो इसका इतना अच्छा मिला है। तो बाबा कहते हैं कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने 5 जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में सब पाप ही करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा कौन है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। हाँ ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे, फिर ब्राह्मण भी उनसे ऊंच है लेकिन होते नहीं है ना, क्योंकि ब्राह्मण कभी तो एकदम हाई स्टेज पर है, कभी बीच में आ जाते हैं, कभी एकदम नीचे आ जाते, इसलिए उनको नहीं रख सकते, लेकिन बाबा कहते उनको भी रखेंगे। हाँ ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे तो जो सबको ऊंच बनाते हैं वह तो प्रारब्ध है, सबसे बड़ी प्रारब्ध है लक्ष्मी नारायण की, वो प्रारब्ध है, लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थ है ना, वह तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण श्री मत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। लौकिक में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाबा कहते बच्चों को क्या कहना है, हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना, विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते। विराट रूप का चित्र सबने देखा भी है, म्यूजियम में भी है, अब वहां जो बनाया हुआ है तो शिव बाबा को भी दिखाया, ब्राह्मणों को भी दिखाया, लेकिन लौकिक में जो बनाते हैं उसमें ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं ना शिव को दिखाते हैं। तो बाबा कहती हैं ना शिव को दिखाते ना ब्राह्मणों को दिखाते, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई मुश्किल ही कोई की बुद्धि में बैठता है। अथा पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं, कितने टॉपिक्स मिलती हैं। शुरू में बाबा हर बात की टॉपिक बना के देते थे, बाबा कहते ऐसे टॉपिक लिखो, इस टॉपिक पर ये सुनाओ। तो बाबा कहते हैं कितनी टॉपिक्स मिलती हैं, सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, कौन सी, सच्ची गीता भगवान से सुनने से मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन जाते हैं, कितनी अच्छी टॉपिक है, परंतु समझाने की भी तो अक्ल चाहिए ना। अभी बता तो दिया लेकिन कैसे समझाना, बाबा कहते समझाने की भी अक्ल चाहिए ना, ये बात क्लियर कर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कभी कभी बाबा कहते थे बाहर ऐसे लिख दो और जो उसको पढ़ते उनको लगे ये क्या लिखा है, आए और पूछिए क्यों ऐसा लिखा है। तो बाबा कहते हैं ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है, फिर बाबा बता रहे एक एक ज्ञान के पॉइंट लाखों करोड़ों रुपए के, एक एक पॉइंट लाखों करोड़ों रुपए के, क्योंकि एक ही पॉइंट को धारण कर लेते हैं तो विश्व के मालिक बन जाते हैं। एक ही ज्ञान की पॉइंट लाखों करोड़ों रुपए की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो, तुम्हारे एक एक ज्ञान की, बाबा कहते तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते। पुरुषार्थ यहाँ और ये पुरुषार्थ के प्रारब्ध है, देवताओं को कदम में पदम दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है, वह ब्राह्मण लोग तो कच्छ में कुरम गीता लेते हैं, अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ, कच्छ में बुद्धि, बाबा आज कहते कच्छ में वो तो ऐसे पकड़ के घूमते हैं ना, तो बाबा कहते तुम्हारे कच्छ अर्थात बुद्धि में है सत्यम, उनके कच्छ में है कुरम, तो तुमको नशा रहना चाहिए, हम श्री मत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं, तुम्हारे पास कोई भी पुस्तक नहीं है। हालांकि अभी ज्ञान का इतना लिटरेचर बन गया, बाबा के टाइम पर तो कोई किताबें नहीं थी, बाबा के टाइम पर केवल दो किताबें छपी थी, मन की सच्ची शांति ऐसी किताब एक छोटी सी होती थी, उस समय क्या प्रदर्शनी में होते सच दस रुपए में दस पैसा होता था, दस पैसे पैसे में मन की शांति, दस पैसा होता था किताब का, उस समय 10 पैसा भी बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा कहते तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है, अभी तो बहुत सारी किताबें हैं, तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, इसलिए सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है, इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती। त्रिमूर्ति से हम समझा सकते स्थापना पालना और विनाश, इसमें ही सारी गीता आ जाती है, सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसको समझा सकते हो, इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो, ये तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे, कैसे विकर्म विनाश होंगे, क्या होगा, बाबा कहते समझा सकते हो। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। उस समय तो बैज पे समझाते भी थे, कई पूछते भी थे, और अभी तो बैज को देखते ही लोग तो इतना हैरान होते हैं, कहते इतने अच्छे बैज हैं, हमको भी दे दो। लेकिन उनको बताया जाता है ये बैज आपको नहीं दे सकते, ये बैज तो जो ज्ञान योग सीखते हैं इसकी वैल्यू क्या उसको समझते तब देते ना। तो बाबा ने सेवा का एक अच्छा साधन बताया था, ट्रेन में बैज डाल के जाओ। उस समय तो क्या होता था, नए नए थे ना, तो ब्राह्मणों को भी शर्म आता था, बैज भी छुपा देते थे, बैज लगाते ही नहीं थे, कभी कभी तो बैज लगाते ही नहीं थे, लोग कहेंगे ये क्या लगाया हुआ। लेकिन अभी तो बैज को देख करके कितनी बड़ी सेवा होती, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। तो बाबा कहते ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, एक तरफ लक्ष्मी नारायण है, दूसरे तरफ कृष्ण है। तो बाबा कहते उनको कहो कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं, पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, और धर्म संस्थापक कोई राजाई स्थापन नहीं करते, उनमें उनकी क्या है राजधानी बनती, राजाई नहीं स्थापन होते। उनकी संख्या धर्म संस्थापकों के जो शिष्य हैं वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन राजाई स्थापन होती है इस ज्ञान की पढ़ाई से। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, ये एक घंटा भी बाबा कहते कितनी अच्छी पढ़ाई है, सिर्फ रोज एक घंटा पढ़ो। कितना पढ़ते हैं, एक घंटा ही तो पढ़ते हैं, 7 से 8 के बीच में पढ़ते हैं बस, और तो सारा दिन नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ाई में तो 8-8 घंटा पढ़ते हैं, 4-4 घंटा 5-5 घंटा, इसके अलावा ट्यूशन भी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, सिर्फ रोज एक घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये एक घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम होता है जो सबको फ्री है, अब सुबह के टाइम पर तो हर एक फ्री भी है, कई कई सेंटर पर देखते हैं वो टाइम नहीं होता ना, सुबह 5 बजे क्लास करते हैं, कहीं पर 6 बजे चलती है, लेकिन यहाँ बाकी नॉर्मली सभी सेंटर्स पर लगभग 7 बजे ही चलती है। सुबह का टाइम अपना है तो बाबा के तो उसमें फ्री है, पढ़ भी सकते हैं, ये एक घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम होता है जो सबको फ्री है, बाकी कोई बांधेली आदि है सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और टाइम रख सकते बांधेलियों के लिए सेंटर पर, दोपहर के टाइम 11 से 12 जब उनके सारे कारोबार हो जाते थे, माताओं के लिए 11 से 12 या शाम को 4 से 5 भी रखते हैं। तो बाबा ने कहा है तो सुबह का टाइम, अगर कोई नहीं आ सकता है तो उस समय आते हैं, कहीं उनकी नौकरी भी ऐसी होती है रात के टाइम भी उनके लिए क्लास होती है, तो जैसा उनकी सुविधा अनुसार वैसा ही क्लास रख सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाकी बांधेली आदि हैं सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और टाइम रखे हैं, बैज लगा हुआ हो कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। बाबा कहते कहाँ भी जाते हो तो बाबा का ये संदेश क्या करना है, सबको देते ही जाना है, कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज नहीं डाल सकते, अब बैज इतना छोटा कैसे डालेंगे अखबार में, तो बाबा ने एक और तरीका बताया। अभी तो क्या अखबारों में क्या टीवी में सब कुछ आता ही रहता है, बहुत ज्यादा आता है, सब चलता ही रहता है, पूरे विश्व के अंदर मीडिया के द्वारा कितनी सेवा हो रही है। उस समय तो कुछ भी नहीं था, अखबार का एक छोटा सा भी लेना होता था बड़ा मुश्किल होता था। तो बाबा ने कहा देखो अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे, कौन सा त्रिमूर्ति का, एक तरफ का एक बड़ा बनाकर फिर डाले भी थे उस समय, फिर एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने के है बहुत सहज। ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ये सारा अखबार में डालना है, डलवाना है, ये तो कोई भी कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद ना करें, दूसरों को याद दिलाते। अब इसमें कितना बड़ा राज है। बाबा ने देखो एक इतनी अच्छी युक्ति बता दी है। कई बच्चे कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। बाबा कहते कोई बात नहीं, दूसरे को याद कराओ तो मतलब अपने आप ही याद हो जाएगा। बाबा ये नहीं कहते तुम याद नहीं करो। बाबा कहते अच्छा, कई बच्चे आते थे बाबा को, बाबा हम बाबा को याद ही नहीं कर सकते। बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, दूसरे को पूछना शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। शिव बाबा का नाम बोलेगा तो उसको याद हो जाएगा, उसको याद दिलाएगा तो पहले खुद को याद आएगा। तो इसलिए बाबा ने आज कितनी सहज युक्ति बताई है। तो बाबा कहते हैं अच्छा खुद भल याद ना भी करे, दूसरों को तो याद दिलावे। याद नहीं करते हैं, दूसरे को दिलाएंगे उसका खुद का भी अटेंशन जाएगा, वह भी अच्छा है। दूसरों को कहो देही अभिमानी बनो, और खुद देही अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। दूसरे को कहा तुम ऐसा बनो, खुद नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे को बताने से पहले जैसे बोलते हैं तो खुद को भी वो स्मृति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं अच्छा खुद भल याद ना भी करे, दूसरे को याद दिलाए वह भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे कि देही अभिमानी बनो, और खुद देही अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर आते हैं वाचा में, फिर क्या आता है कर्मणा में। तो बाबा बता रहे हैं पहले पहले तूफान आते मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, बाबा ने पहले ही बता दिया। जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं ना, जो कई जन्मों का हिसाब किताब होता है, वो सब का सब आने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना। आया मनसा में भाई माइंड खराब हो गया, फिर बोलना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा होता है बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, मनसा में कई बातें आ जाती हैं, फिर तो जोर जोर से बोलना शुरू कर देंगे, पता भी नहीं रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। फिर कर्मणा में भी आ जाते, बोल में आता है बोल के बाद, फिर कर्मणा में आते, फिर बाद में जाकर के पश्चाताप ही करते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, पहले पहले तूफान आते मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं कर। मनसा में कई बातें आती हैं, किसके लिए मन में आएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाबा कहते सोच समझ करके बुद्धि से काम लो, नहीं तो कर्मणा में आने से फिर बाद में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम कभी नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं और बुरे भी आते। अब बाबा कितनी राहत दे रहे, बच्चों के अंदर अच्छे संकल्प भी बहुत, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बुरे तो आते हैं नहीं, बुरे जो है वो थोड़े आ जाते हैं, अच्छे संकल्प होते हैं, मीन्स अंदर में अच्छे संकल्प हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उस पर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम कभी नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं। संकल्प अच्छे होते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए, ये बुद्धि बाप ने दी है ना। कहेंगे क्या करें क्या करें, बाबा ने कहा बुद्धि तो दी है ना बाबा ने, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो बाबा ने बुद्धि तो दी है, उस पर ध्यान देना है। ये बुद्धि तो बाप ने दी है ना, दूसरा कोई समझ ना सके, वह तो रॉन्ग कर्म करते ही रहते हैं। तुमको तो अभी राइट काम करना है, अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। आप बताएं बाबा ने क्या बताया, अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज प्यारी मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं, वो भी हम सुनेंगे। उससे पहले हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी भी बुरे संकल्प आए तो भी उन्हें रोकना है। पहले तो आए नहीं, अगर आ भी जाते तो बाबा क्या कहते हैं, उन्हें रोकना। मनसा में कभी भी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। कितना सुंदर, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता। कल क्या किया, रंग लगाए ना कईयों ने, और कईयों ने तो ज्यादा ही लगा दिए, कईयों ने तो बिल्कुल हल्का सा। अब बाबा कहते कौन सा रंग लगाना है, वो तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज बाबा क्या बता रहे हैं, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। अब फरिश्ता बनना है तो कैसे बनेंगे, रूहानियत के प्रभाव से। तो जैसे मेकअप करते हैं तो चेंज हो जाता है ना, तो बाबा कहते जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। रूहानियत से क्या होगा, फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अभी हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी जब भी कोई भी बात कोई भी टॉपिक लेती थी तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होता था। ब्रह्मा बाबा तो सागर समान, एक लहर दूसरी लहर तीसरी पॉइंट, लेकिन मातेश्वरी जी जब समझाती थी, जहां भी मम्मा का भाषण होता था लोग ऐसे एक टिक होकर के सुनते रहते थे और एक एक बात उनकी बुद्धि में बैठती थी। अब हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। कहते ना बहुत बोलते कर्म बंधन है, ये बंधन है, क्या करें। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ बहुत मनुष्य पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हरेक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है, बच्चे का काम है। अब कर्म बंधन तोड़ने के लिए क्या करना है, बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए। दिल से समर्पित होना मीन हर जो दिल की बात है सच्चाई से बाबा को बता देना। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे दे। हम तो निमित्त हैं, बाबा का काम है, तो ये जब संकल्प रहेगा तब सहज हो जाएगा। अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे, फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना। बाबा के पास ऐसे कई उदाहरण हैं, कई आते थे बाबा हमारे सामने ये समस्या, हम ये क्या करें। बाबा उसकी जन्म पत्री को देखकर एक को कहेंगे तुम करो, दूसरे को कहेंगे नहीं नहीं तुमको नहीं करना, एक को कहेंगे नष्ट मोह बनो और तुम समर्पण हो जाओ, और दूसरे को कहेंगे नहीं तुम घर में रहो। उसकी जन्म पत्री उसके स्थिति को देख करके बाबा राय देते थे। तो मम्मा बता रही है फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं शुरू सुनते रहो और अपने मत पर चलते रहो। सुनते रहते हैं हाँ हाँ अच्छा अच्छा करते रहते हैं, अपने मत ऐड करते ना। तो मम्मा क्या कहती है, सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं शुरू सुनते रहो और अपने मत पर चलते चलो। बाप साकार है तो बच्चों को भी स्थूल में पिता टीचर गुरु का सहारा लेना। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु है। तो बाबा कहते हैं बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना। ऐसे नहीं आज्ञा मिले और पालन न कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। कभी कभी साकार में बाबा को पता होता था ये बच्चे के अंदर ये कमजोरी ये है, इसको ऐसा। तो कई बच्चे कहते बाबा आप इसको शिक्षा दो ना, बाबा कहते थे नहीं आत्मा कमजोर है, बाप शिक्षा दे वो न कर सके तो उसका अकल्याण हो जाएगा। तो इसलिए मम्मा क्या कह रही है, ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले पालन न कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। मम्मा बता रही है कि फरमान को भी पालन करने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है किस बात में इनका कल्याण। रम बाबा जानते थे किसको क्या शिक्षा देनी है, किसको क्या देनी। चलाने वाला रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है। तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन को तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। बाबा के पास आते थे बाबा मेरे को सरेंडर, फिर कहेंगे अच्छा बाबा मैं सरेंडर हो जाऊंगा मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बाबा कहते समझ जाते थे देखो इसकी अवस्था कैसी है, फिर ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर छोड़ने, इसमें कोई घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है। वह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तो छोड़ने का। बाबा हमेशा कहते सबको परिवार में रहना। शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई थी वो थोड़ों ने घर बार छोड़ा, सबने थोड़ी छोड़ा। तो बाबा कहते हैं मम्मा बता रही है ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट न होता तो जो तुम्हारी अब सेवा हो रही है फिर वो कौन करे, नहीं तो यज्ञ कैसे स्थापन होता। यज्ञ स्थापन हुआ तो उन्हीं से हुआ ना। तो अगर ये पार्ट न होता अभी तो तुम्हारी जो सेवा हो रही है फिर कौन करे, अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है। अब तो कोई आते ना, हम यहाँ रह जाए, हम छोड़ दें। बाबा हमेशा कहते हैं बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने परिवार को चलाना, रचना जो है उसको संभालना, अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है। मगर परमात्मा का हो जाना है, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वह ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाप की मददगार बनते। डरने वाले को ना तो प्राप्ति होती है ना सेवा में मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है, जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटकेंगे तो फिर मदद देकर पार करेगा। अब दूसरी बात मम्मा बता रही है कि अगर जीते जी मरेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी, अगर कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है कहीं अटकेंगे तो वही पार करेगा, जिसको दिया है जीवन तो वही पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा करना मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वह गिरा देगी। मोह के कारण तो कोई कहां से कहां चले गए, कितने लोग घर बार छोड़ के चले गए, मोह के कारण कितने लोग समर्पण जीवन भी छोड़ के चले गए। तो मम्मा कहती है इसमें मोह की रग होगी तो वह गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहां हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, हिम्मत नहीं होती, पूछते रहते, कन्याएं भी आती है हम क्या करें, समर्पण हो, सेंटर पर रहें, क्या नौकरी करें, बाबा से पूछो। अरे बाबा कहते कमजोर है, क्या पूछने का, खुद ही कमजोर है, हिम्मत ही नहीं है। तो मम्मा बता रही है हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। कहां हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना। बुद्धि पवित्र तो सारी बातें क्लियर हो जाती है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी। अब ये पहाड़ों पर जाते रहते ना, सामने ही जगह है तो है नजदीक, लेकिन पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है, इधर से घूमो, इधर से घूमो, इधर से घूमो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है ना। तो मम्मा कहती है मंजिल दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बाकी समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। चढ़ाई कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, जो ले जाने वाला समर्थ है तो फिर ना डर लगता है ना कुछ होता है, और ये आराम से चढ़ जाते हैं। तो मम्मा बता रही है मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी है बाकी है, लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें भी स्नेह हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो। बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय भी हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। कई बार कुछ कहना होता है, बात राइट कहनी होती है ना, तो बहुत लड़ झगड़ के कहते हैं, तो वही बात को अगर रियलिटी से बताएंगे तो सुनने वाला भी समझेगा, तो बोल मीठे लगेंगे, रियलाइज करेंगे, कड़वे नहीं लगेंगे। तो इसलिए बाबा कहते निर्भय भी हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कल से तो न्यू अराइवल्स